श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गो गणयो गौवें बछड़े तथा ग्वालवाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलै तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवस दूर्वा अर्थात दूब घास का घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित है, मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान वो करते हैं। ओम, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन की महिमा भगवान दर्शाना चाहते थे, ये दूसरा कारण भगवान ने गोवर्धन धारण किया। ब्रजवासियों के द्वारा और स्वयं भगवान भी गोवर्धन की पूजा किए। गोवर्धन का अर्थ हमारी इंद्रियां जो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भक्ति की एक परिभाषा दी गई है, जब हम हमारे मन और हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। अब होता क्या है कि हम प्रयास तो करते हैं हमारे मन और हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, परंतु उसमें वर्धन होने के बजाय वो दुर्गति के पथ पर चलती रहती है। इसलिए गोवर्धन का अर्थ है कि जो वृद्धि करे हमारे सेवा में। और गो गोपाल गोप एवं गोपियों के आनंद का जो वर्धन करते हैं वो है गोवर्धन। और हमने हमारे पिछले सेटिंग में ये जो दूसरा गुण है गोवर्धन पर्वत का, या जो दूसरी शिक्षा है गोवर्धन पर्वत से हम सीखते हैं, लवल्यम। और चैतन्य चरितामृत का ये श्लोक हमने लिया था, जिसमें रामानंद संवाद में बताया गया है कि भक्ति का अर्थ है जब हम भगवान को न केवल प्रेम से बल्कि उत्कंठा, ये उत्कंठा शब्द बना है, जब गोपियां अपने कंठ को ऊपर कर भगवान श्री कृष्ण को ताकती, उत्कंठ, तो वो अपनी लालसा दर्शाती, अपनी उत्कंठा उस प्रकार से वो दर्शाती। तो हमने इस संदर्भ में हमारा लौल्यम हम कैसे बढ़ाएं, तो इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी, द 6C फॉर्मूला, चॉइस चैलेंजेस कमिटमेंट क्लैरिटी कैरेक्टर, और छठा है कंट्रीब्यूशन। और हमने चॉइस से प्रारंभ करते हुए हम चयन करें भगवान का, हमारी स्वेच्छा का सदुपयोग करते हुए। और मनुष्य जीवन में जब हम ये स्वातंत्र्य रत्न जो हमारे पास है, स्वेच्छा का रत्न, दो कारणों के वजह से हमारे अंदर हम देखते हैं कि ये कार्यरत रहता है। एक तो हम जब आकर्षित रहते हैं किसी वस्तु से, व्यक्ति से, या जरूरत आवश्यकता के वजह से। तो हमने पिछले सिटिंग का ये रिकैप हमारा चल रहा है, कन्वीनियंस वर्सेस चैलेंजेस। हमने उदाहरण लिया था, भगवान जब देखते हैं कि हम हमारी भक्ति में ढीले पड़ रहे हैं, तो जैसे शक्कर ठीक से मिली नहीं है तो मिठास नहीं आती किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो भगवान मिठास लाने के लिए थोड़ा हिलाते हैं हमें। और हमने ये सारे उदाहरण लिए थे, सबसे पहले ब्रजवासियों का उदाहरण, तत्पश्चात रुक्मिणी देवी इनका उदाहरण, कन्वीनियंस वर्सेस चैलेंजेस इस संदर्भ में, तत्पश्चात ध्रुव महाराज का उदाहरण, अर्जुन, प्रह्लाद महाराज, और फिर अंत में श्रील प्रभुपाद। तो ये जो चुनौतियां जिसकी चर्चा हम हमारे पिछले सेटिंग से कर रहे हैं, दो श्रेणी की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हमारे साधना भक्ति में, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी चुनौतियां आती हैं हमारे इंद्रियों और अन्य इंद्रियों को लेते हुए। और इस संसार में जब हम ये भौतिक शरीर के साथ इंद्रियों को साथ में लेकर भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जहां रह रहे हैं वो स्थान एक चुनौती बन जाता है, जिस काल में हम भक्ति कर रहे हैं वो काल एक चुनौती बन जाता है, जिस परिवार में, ये शरीर तो खैर है ही, ये शरीर जिस परिवार के अंदर पैदा हुआ, कई बार वो परिवार एक चुनौती बन जाता है। जिस देश में हम भक्ति कर रहे हैं वो देश, वो जो सरकार है, कितनी सारी चुनौतियां हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में अवधूत ब्राह्मण की कथा है, जिन्होंने 24 गुरु अपने जीवन में अपनाए, और इन 24 गुरुओं में से एक गुरु उनके हुए ईशकार। ईशकार का अर्थ है वो व्यक्ति जो तीर बनाता है। तो एक ऐसे राज्य में भ्रमण कर रहे थे अवधूत ब्राह्मण, जहां के राजा के जो तीर बनाने वाला, उसका एक कारखाना था। तो बाहर से वो इस ईशकार को, इस तीर बनाने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब तीर बनाते समय बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है उस व्यक्ति को। तो तीर बनाते समय ये व्यक्ति ये मग्न था, एक तीर को वो धार दे रहा था, और अवधूत ब्राह्मण अब इसे देख रहे हैं कि ये तीर को धार दे रहा। और उसी समय उस राज्य का जो राजा, वो अपने पूरी बटालियन के साथ, पलटून के साथ वहां से गुजर रहा था, उसी के वर्कशॉप के बाहर। अब देखो, अगर राजा गुजर रहा है, कितनी आवाज, सब राजा का गुणगान कर रहे हैं, जयकार राजा का हो रहा है, हाथी के ऊपर राजा विराजमान है, ढोल नगाड़े बुगल क्या क्या नहीं बज रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन, कितना डिस्ट्रैक्शन होगा। कोई अगर अंदर कुछ कार्य कर रहा है उस कारखाने में, तो बाहर कितना डिस्ट्रैक्शन होगा। हम लोग लेक्चर के अंदर एक कुकर की सिटी बजती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां ठीक उसके वर्कशॉप के बाहर सड़क पर ये राजा की सवारी जा रही है। तो अवधूत ब्राह्मण अब देख रहे हैं इस शिकार को, तीर बनाने वाले को, कि क्या इसका ध्यान भंग होता है कि नहीं। और उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बिल्कुल जैसे स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं, टस से मस नहीं हुआ। वो अपने कार्य में इतना मशगूल दिख रहा था कि अवधूत ब्राह्मण ने उस तीर बनाने वाले को अपना गुरु बना लिया। तदैवम आत्मन अवरुद्ध चित्तो नवेद किंचित बहिरंतरम वा यथेशुकारो नृपतिम व्रजंतम ईशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। अवरुद्ध चित्तो, चित्त उसका बिल्कुल भी यहां वहां भ्रमित नहीं हुआ उस व्यक्ति का। तदैव आत्मन्य अवरुद्ध चित्तो नवेद किंचित बहिर अंतरम वा, वेद का अर्थ है ज्ञान, उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। बहिर अंतरम, यहां पर अंतरम का अर्थ वो जो कर रहा था वो नहीं, अंतरम का अर्थ है उसके मन में भी किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं था, न तो आंतरिक विक्षेप न बाह्य विक्षेप, टोटली एब्सॉर्ब्ड इन शार्पनिंग द एरोस। नृपतिम ब्रजंतम, नृप अर्थात राजा वहां से गुजर रहा है, न ददर्श पार्श्वे, कोई फर्क उसको पड़ा नहीं। तब देखिए, जब हम ऐसी कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत से ऐसा प्रसंग जब हम सुनते हैं, तो तात्पर्य में रजानंद गोस्वामी लिखते हैं कि हमें अब हमारी साधना भक्ति में क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है समझना। कि जैसे वो इशकार, वो तीर बनाने वाला अपने कारखाने में मग्न है, निमग्न है, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं, न बाहर से न अंदर से, तो हम जब हमारे कारखाने में बैठते हैं, कौन से कारखाने में और क्या तीक्ष्ण करना चाहते हैं, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे हृदय को, तो उस दौरान बहिर अंतरम अलग अलग प्रकार के विक्षेप भगवान भेजेंगे चेक करने के लिए, चेक करने के लिए भेजेंगे कि हम कितने ज्यादा एब्जॉर्ब्ड हैं। तो इसलिए हमने उसको नाम दिया है, एवरी मॉर्निंग वी साधकास वी एंटर द जपा जिम, व्यायामशाला हम लोग गए होंगे, वर्जिश किए होंगे कभी ना कभी। तो रोज सुबह हम एक ऐसे जिम में एंटर करते हैं, और कई बार वो जो बीड बैग है वो डंबल की तरह लगती है। और वर्जिश करते समय एक बार, दो बार, ऐसे 16 बार, और नहीं 16 बार नहीं, पहले उसके अंदर 108 बार, फिर 108 इंटू 16 कितना, कुछ 1700 कुछ होता है मेरे ख्याल से, 1728 बार। तो होता क्या है ये जपा जिम में, हम हमारे मन के साथ जो वर्जिश करते हैं तो दो चीजें होती हैं, पुश आउट पुल इन। तो क्या हमें बाहर निकालना है और क्या अंदर डालना है ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार उल्टा करते रहते हैं हम, जिस चीज को बाहर फेंकना है उसे पकड़ पकड़ कर अंदर डालते हैं, और जिस चीज को अंदर डालना है उसको बाहर खड़ा करते हैं। सो जस्ट लाइक इन एनी जिम व्हेन समवन गोज टू वर्कआउट, पुश आउट पुल इन, पुश आउट पुल इन, यही होता है। तो अब जब हम जप के लिए बैठते हैं, हमारी साधना भक्ति करते हैं, तो जो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स है उनको हमको प्रयास कर बाहर निकालना है। यतो निश्चलति मनस अस्थिरम। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। मनस चंचलम अस्थिरम, भगवान श्री कृष्ण कहते ये मन जो चंचल और अस्थिर है ये तो यहां वहां भागता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब यहां पर आते हैं, फाउंटेन जलता है तो वो अपनी मां की गोद से फाउंटेन की ओर आकर्षित होते हैं, थोड़ा निकट जाते हैं, जैसे ही वो थोड़ा और निकट गए तो फिर मां उठ के पकड़ के वापस बिठाती बैठता, फिर थोड़ी देर बाद वो बैठ जाता है थोड़ी देर के, फिर थोड़ी देर बाद वापस उठता है, फिर उसको और कुछ दिखता है वहां पर वो आकर्षित होता है, वहां पर जाता है, थोड़ा ज्यादा दूर गया मां फिर उठती है फिर पकड़ के फिर बिठाती। कितनी बार हमने देखा हो, बच्चे की आदत क्या है, उठ के जाते रहो यहां वहां जाते रहो, मां का कर्तव्य क्या है, पकड़ के बिठाते रहो पकड़ के बिठाते रहो। और जब बच्चा एक बार दो बार तीन बार चार बार नहीं समझ रहा कि मां क्या चाहती है उससे, तो फिर मां क्या करती है, उसको एक हल्का सा तमाचा लगाती है, तब उसको थोड़ा लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। लेकिन तमाचा हल्का सा था इसलिए लेसन भी हल्का मिला उसको, फिर उठ के जाता है थोड़ी देर बाद, फिर जब मां देखती है कि ये हल्का तमाचा काम नहीं किया, थोड़ा जोर से तमाचा लगा, फिर जब झंझनाहट होती है उसके अंदर, जब उसके सारे पुर्जे हिलने लगते हैं, फिर उसको समझ में आता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते हैं मन के साथ भी हमको ऐसा ही करना। भक्ति सिद्धांत तो कहते हैं कि शुरू ही कर दो तमाचे से, ही डजंट गिव एनी रेस्पाइट, की कोई उसके ऊपर ज्यादा लीनियंसी मत दिखाओ, स्टार्ट बीटिंग मॉर्निंग इवनिंग, मारता शुरू कर दो उसको। तो भगवान के वही होता है, अगर हम ठीक है हम लोग भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के स्तर पर नहीं हो तो जब करते समय हमारा भी मन वो हमारे बच्चे की तरह हमारे गोद से निकलकर गेट के बाहर जाता है, शरीर अंदर बैठा है मन गेट के बाहर जाता है, लॉन में जाता है, गौशाला के वहां जाता है, उस गेट से बाहर निकलता है। यहाँ हमको करना क्या है, पकड़ पकड़ के उसको जो गेट से गया वो गेट से पकड़ के वापस अंदर लाना है उसको। और कई बार अंदर ही घूमता रहता है मंदिर के, बड़ा मंदिर है सीलिंग भी हाई है बालकनी में, यहाँ वहां घूमता फिरता है, लेक्चर के समय भी ऐसे ही होता है, घूमता फिरता है, पकड़ पकड़ के उसको लाना पड़ता है वापस। तो डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, अब ये जो मन को पकड़ के लाना, मतलब भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण नाम को ध्यान देकर जप करना, पकड़ के कृष्ण नाम को कि हाँ मेरी दीक्षा हुई है, हरि नाम दीक्षा हुई है, हरे कृष्ण महामंत्र मेरे गुरु ने दिया है मुझे जप करने के लिए, ये माला जो है इसका और कोई काम नहीं है जप के अलावा, उसका और कोई अल्टरनेट यूज नहीं है माला का, केवल जप करने के लिए। एक हमको बचपन में, मेरे ख्याल से हमारे टेक्स्ट बुक में स्टोरी थी या हमको किसी टीचर ने सुनाई थी, एक राज्य में एक बहुत ही कॉमिक फिगर जिसको कहते हैं, ऐसे अलग प्रकार का व्यक्ति, हर समय उसका मजाक उड़ाया जाता था। कई होते हैं ना ऐसे कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती कि जहां पर भी वो रहते हैं लोग खिल्ली उड़ाते हैं, तो इस व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जाती थी रोज। ये व्यक्ति एकदम परेशान त्रस्त, रोज मेरी खिल्ली उड़ाई जाती। राजा के पास जाता है, राजा को कहता है आप राजा हैं यहां के, आपका उत्तरदायित्व है कि जो भी प्रजा वो सब शांति और सुख से रहें, मेरी शांति और मेरे को सुख नहीं मिल रहा है। राजा ने पूछा क्या हुआ, रोज आपके राज्य की जो प्रजा है मेरी खिल्ली उड़ाती है, मजाक उड़ाती है, क्या कर रहे हो आप उसके लिए? तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने राज्य के मुष्टंडों को बुलाया, एकदम शक्तिशाली मुष्टंडे आए, उनको कहा अपनी तलवार जो सबसे धार की हुई है वो वाली लेकर आओ, ये देख रहा है क्या कर रहा है राजा, ये मुष्टंडों को क्यों बुला रहा है, तलवार के साथ आ गए वो तलवार के साथ। राजा ने अपने मंत्री से कहा एक घड़ा लेकर आओ तेल से भरा हुआ, इसके हाथ में दो, पूरा ऊपर तक तेल से भरा हुआ घड़ा इसके हाथ में थमा दिया। राजा ने कहा अब तुम इस तेल से भरे हुए घड़े को मेरे राज्य में लेकर जाओ और वहां शाम तक तुम्हें वापस आना है, पूरे राज्य में भ्रमण कर कर इस घड़े को लेकर, एक बूंद तेल यदि इस घड़े से नीचे गिरा, मुष्टंडों को मैं अभी कह रहा हूं तुम्हारे सामने, इसका सर धड़ से अलग कर देना। ये एक अपनी समस्या लेकर आया था राजा के पास, इसने कहा कि ये तो समस्या क्या मुझे ही खत्म करना चाह रहा है, अब यहां पर राजा ने इसको आदेश दे दिया है, घड़ा इसके हाथ में है, इसका टाइम शुरू हो गया, मुष्टंडे भी खड़े हैं, अभी अगर ये कुछ कहे या एक भी बूंद तो मुष्टंडों को तो ऑर्डर मिल चुका है, तो करना पड़ रहा था इसको, ये पलटा गया। और इस दौरान राजा ने मंत्री से कहा कि राज्य में जाओ ढोल नगाड़े लेकर सबको बोल दो कि ये सबके घरों के आगे से गुजरने वाला है, आज राजा ने लाइसेंस दिया है कि हर कोई इसकी मजाक उड़ा सकता है, खिल्ली उड़ा सकता है, हर कोई इसका मजाक उड़ा सकता है, सरकार मान्य। तो आज तो एकदम सब लोग और ज्यादा, सरकार ने कह दिया, राजा ने कह दिया, तो और एंथुजियास्टिक उत्साह से रेडी थे, ये जहां जहां से गुजरता वहां वहां सब लोग रेडी इसकी इसका मजाक उड़ाने के लिए। ये वो घड़े को पकड़े हो, पूरे मुष्टंडे पीछे उसके, उनके चलने की आवाज, वो तलवार एक दूसरे की तलवार को मारते हुए, वो तलवार की भी आवाज उसको सुनाई दे रही है, ऐसे घूमते घूमते वो फाइनली वापस पहुंचा शाम को, एक भी बूंद गिरी नहीं उस घड़े से। उसने वो वापस से मंत्री को ऐसे का ऐसा घड़ा दिया, उसने अपना सर संभाला है अभी भी ऊपर, मुष्टंड को बोला हो गया भाई जाओ जाओ तुम अभी। राजा को पूछता है क्या भाई क्या माजरा क्या था आपका, सुबह से मुझे सूली पे चढ़ा रखे हो तुम। तो राजा ने पूछा तो आज कितने लोगों ने खिल्ली उड़ाई तुम्हारी। तब मुझे एहसास हुआ उस व्यक्ति को कि आज का पहला दिन किसी ने खिल्ली नहीं उड़ाई मेरी। हुआ क्या था, खिल्ली सबसे ज्यादा उस दिन उड़ाई गई थी उसकी। राजा ने मंत्री से पूछा बताओ मंत्री आज कितने लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ाई। मंत्री ने कहा आज तो पूरा राज्य इसकी खिल्ली उड़ा रहा था सरकार, यहां तक कि कुत्ते भी भौंक रहे थे, वो भी मजाक उड़ा रहे थे। तो क्यों उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि दो कारणों के वजह से, हिज एब्जॉर्प्शन इन दैट पॉट ऑफ ऑयल, उसके अंदर उसकी निमग्नता और उसके साथ साथ मरने का डर। तो ये दो यदि हम कारण लें जप करने का कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, की माया देवी की तलवार मुष्टंडों के साथ हमारे पीछे है हर क्षण, तो भगवान ने दोनों दे दिया है, इस दुखाले संसार को इस प्रकार से बनाकर रचित कर दिया है, और उसके साथ साथ हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब होता क्या है कि हम, क्योंकि कोई भी चीज जब बहुत आसानी से साधारण तरीके से मिल जाती है तो हमारा उसको मूल्य, हम उसे मूल्य उसका नहीं देखते। हाल ही में मैं एक कहानी पढ़ रहा था शचिनंदन महाराज द्वारा कही गई, बहुत सुंदर कहानी है। एक राज्य में एक राजा, वो अपने घोड़े पर सैर पर निकलता है एक दिन, और बहुत बड़ा उसका राज्य था तो बहुत दूर तक वो घोड़े पर चलता हुआ सैर करता हुआ निकल पड़ा, और एकदम उसके राज्य के अंतिम छोर पर वो एक स्त्री से मिला, बहुत ही सुंदर स्त्री से मिला। वो स्त्री उस राजा से इतना आकर्षित हुई, प्रेम हो गया, दोनों में प्रेम हो गया। राजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें मेरी पटरानी बनाऊंगा, एक हफ्ते बाद तुम्हें मैं मेरी पटरानी बनाऊंगा। तो एक हफ्ते बाद मैं मेरे दूत को भेजूंगा और तुम्हें सब कुछ तुम यहां से अपना समेट लो, क्योंकि एक हफ्ते बाद तुम यहां नहीं मेरे राज्य में रहोगी। सुनहरा मौका उसको ही प्राप्त हो गया। एक हफ्ते बाद राजा ने दूत को भेजा, और क्योंकि वो उस राज्य के अंतिम छोर में रह रही थी तो उसको राजा के महल तक पहुंचने में कुछ दिन लगे। तो जो दूत भेजा गया था उस दूत के साथ ये स्त्री आ रही है। एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीत गए, अब तक वो महल नहीं पहुंची, उसकी उत्कंठा। इस दौरान हुआ क्या कि इस स्त्री को उस दूत से प्रेम हो गया। होता है ना कभी कभी, रास्ते में उस दूत से प्रेम हो गया इसको, और इसको लगने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसी स्त्री नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसे विचार, मैं इस दूत से कैसे आकर्षित और प्रेम कर सकती हूं। लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रही थी उसका आकर्षण उस दूत के प्रति। और धीरे 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 जब चौथा दिन, पांचवा दिन, फिर जब वो पहुंची महल में, मन के अंदर उसको थोड़ी ग्लानि हो रही थी, परंतु महल में पहुंचने के बाद उसे क्या पता चला कि वो दूत वही राजा था। तो इसमें कहा गया है कि हम लोग उस स्त्री के समान हैं, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी उस राजा के समान हैं, और हरिनाम वो दूत है। हम लोग हरिनाम करते करते भूल जाते हैं कि ये हरिनाम और राधा मदन गोपाल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम अंतर देखते हुए ग्लानि करते रहते हैं कि जब महल में पहुंचेंगे, गोलोक वृंदावन पहुंचेंगे, तब जाकर हमारा संबंध स्थापित होगा गोलोक बिहारी से। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि भगवान वही गोलोक बिहारी, वही भगवान अपने नाम के रूप में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वही हैं, वही मदन गोपाल जी हैं। तो प्रश्न है कि कितने बार मदन गोपाल जी हमें हमारे सोलह माला में दिखते हैं, जैसे साक्षात भगवान को हम अपने नेत्रों से देखते हैं, दर्शन करते हैं जब, क्या उसी प्रकार का दर्शन भगवान के हरिनाम लेते समय होता है? ये प्रश्न है। तो इसलिए जब हम हमारी साधना भक्ति में लगते हैं तो ये जो चैलेंजेस हैं, अब एक एक कर हम हमारी साधना भक्ति के कुछ चैलेंजेस, जिसका लिस्ट हमने निकाला है जो 2015 कलयुग में हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, तो अभी कुछ स्लाइड्स जो आप देखोगे, इन स्लाइड्स का शीर्षक ध्यान से पढ़ लेना, चॉइस वर्सेस चैलेंजेस, कि हम क्या चुनते हैं हमारी साधना भक्ति में। हम सब साधना भक्ति में अपनी स्वेच्छा से आए, यहां पर कोई बंदूक की नोक पर नहीं बैठा हुआ, बंदूक की नोक पर किसी को नहीं बिठाया हुआ, यहां पर हम लोग सब यहां पर स्वेच्छा से बैठे हुए हैं। इस्कॉन में हम लोग सब स्वेच्छा से आए हैं। वी हैव यूज्ड अवर फ्री विल टू कम एंड सरेंडर अनटू लॉर्ड श्री कृष्ण। एग्री? चॉइस। हम जब चुनते हैं, आए हम इस्कॉन में कृष्ण भावनामृत संघ में, और इसमें आने के बाद भी जो कुछ हमने करना शुरू किया स्वेच्छा से, हाँ श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि, ग्रंथ इत्यादि, इन्होंने प्रेरणा दी हमें, परंतु फाइनल चॉइस हमारा ही था टू चैंट, टू बिकम इनिशिएटेड, टू सिट, टू प्रीच, जो भी कुछ हम करते हैं हमारा चॉइस। तो एक एक जो चॉइस हमने किए या जो हम करते रहते हैं रोज, जैसे ही हम कुछ चुनते हैं हमारी साधना भक्ति के कोई भी अंग को चुनते हैं, चैलेंज उसके लिए आ जाता है। तो यहां पर अभी द्वंद्व किस में आएगा, आप एक एक लिस्ट में देखना कि हम एक चीज चुनते हैं, तुरंत माया देवी एक चुनौती सामने प्रस्तुत करती है हमारे, या हमारा मन ही जो कि पूरा रचा पचा है माया के अंदर, वो चुनौती सामने प्रस्तुत करता है। तो व्हेन यू चूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वहां से शुरू करते हैं, है ना। मंगल आरती आना है, एकादशी है, संडे है, मंगल आरती आना चाहिए। काइंडली चूज टू स्विच ऑफ योर फोन, इट्स चैलेंज फॉर द स्पीकर। तो संडे एकादशी क्या कॉम्बिनेशन है, छुट्टी का दिन है और एकादशी, तो हमने चुना सैटरडे नाइट को, हमने क्या चुना कि मुझे संडे मॉर्निंग मंगल आरती के लिए जाना, दैट वॉज अवर चॉइस। तुरंत चुनौती क्या, योर तमोगुण एंड स्लीप विल चैलेंज यू, है ना। कई बार सुबह 4 बजे मंगल आरती का अलार्म बजता है ना, तो जो बिस्तर है वो दलदल के समान होता है। दलदल आप जानते हैं, क्विक सैंड, कैसे खींचता है वो अंदर। जितना दलदल से कोई बाहर निकलने का प्रयास करता है, दलदल उतना ही उसको अंदर खींचता है। तो सोचो, बारिश हो रही है, ठंड है, रजाई उड़े हुए हैं, अलार्म 4 बजे बजा, जैसे ही, और आपने ही लगाया अलार्म, चॉइस किसका था, हमारा ही था, हमने ही अलार्म लगाया है पिछली रात को कि मुझे 4 बजे अलार्म को लगाकर, हम अलार्म को क्या बोल रहे हैं, अलार्म मुझे 4 बजे उठाना, मुझे तुम उठाना। और उसको ऐसी जगह पर रखते हैं कि सुनाई भी दे, चॉइस अपने, हमने चॉइस किया है वो। फिर जब वो अलार्म कहता है कि भाई तुमने ही मुझे लगाया था, बैटरी तुमने ही डाली थी मेरे अंदर, और यहां पर अच्छी से पास में तकिए के पास तुमने ही मुझे रखा था, तो लो मैं बजा, बजता है वो। फिर हम उठते नहीं, वो जोर से बजता है अलार्म, कई बार ऐसे होते हैं ना, वॉल्यूम बढ़ती जाती है उसकी, वो जोर से बजता है, वो भी बोलता है मेरा तुम अपमान कर रहे हो, मेरे को लगाए थे तुम उठ नहीं रहे, मैं और जोर से बजूंगा। फिर उसको हम वो स्नूज, वो थोड़ा ऑन करके रखते हैं स्नूज को, स्नूज जानते हैं ना, फिर 3 मिनट बाद वो अलार्म भी बेचारा सोचता है ठीक है सो ले तो 3 मिनट, 3 मिनट बाद मैं वापस बजूंगा, देखना। फिर 3 मिनट बाद वो वापस बजना शुरू करता, हम फिर करवट यहां से वहां बदलते हैं, यार ये अलार्म जल्दी क्यों बज रहा है, डाउट होता है, 4 नहीं बजे होंगे, ये गए गड़बड़ लग रहा है कुछ, तो वापस टाइम देखते हैं 4 बज रहे हैं, दूसरी घड़ी देखते हैं उसमें भी 4 बज रहे हैं, मैच करते हैं 4 ही बज गए होंगे शायद। तो वो बेचारा अलार्म, उसकी क्या गलती, उसको तो हमने बोला था, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और वो जब बजता है अलार्म, हम कितना अथक प्रयास करते हैं अब उस बिस्तर से बाहर आने का। अब एक और चैलेंज, बिस्तर फिर वो दलदल का काम करता है, हम थोड़ा सा करवट बदलते हैं, उठने के लिए बिस्तर खींचता है नीचे, बाहर कहां जा रहा है तू, मुझे अकेला छोड़कर जाएगा। कितने तू, 6 घंटे तूने मेरा संग किया, मैंने मेरी सेवा दी 6 घंटे तुझे, पड़ा हुआ था मेरे ऊपर 6 घंटे, पूरा तमोगुण मेरे अंदर डाल दिया तूने, छोड़ के मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। बिस्तर खींचता है अंदर, तमोगुण अंदर खींचता है, क्विक सैंड की तरह वो काम करता है। अब देखो कि ये जो नींद नींद हमको, कल हम हमारे समर्पण कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि ये जो नींद है, ये नींद एक ऐसा सुख है जो बेहोशी की अवस्था में हम भोगते हैं। सोचो, बेहोशी की अवस्था में कोई इस प्रकार के सुख को भोग रहा है, इसलिए इसको तमोगुण कहते हैं। जो उस बेहोशी की अवस्था में सुख को ढूंढे वो है तमोगुण। सो यू चूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, योर तमोगुण। हमारे सबके अंदर ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के पॉकेट्स हैं, सब अपने अपनी मात्रा में वो कार्यरत रहते हैं, तो वो तमोगुण चैलेंज करता है। फिर नेक्स्ट, उठ भी गए, हमने वो चुनौती को सामना किया, दलदल से बाहर आए, वो काफी नहीं है, मंगल आरती आना है, कोई उठ के खाली पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर नहाना पड़ेगा। सो व्हेन यू चूज टू टेक बाथ, द कोल्ड क्लाइमेट विल चैलेंज यू। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो वहां पर हमको एक ट्रेनिंग दी जाती थी, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना। ट्रेनिंग, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना। तो वो शावर, और वो भी कौन सा ठंडा पानी, टंकी रात को भरी हुई, रात भर टंकी के अंदर जो पानी ठंडा हो रहा है वो पानी शावर में से। तो कई हमारे वो बाथरूम में जाते थे, शावर ऑन करते थे, देखते रहते थे पहले शावर पानी की आवाज आ रही है, लेकिन समझ में आता है कि नहा नहीं रहा है, क्योंकि फिर एक उंगली टच करेंगे, दो उंगली टच करेंगे, फिर एक हाथ, फिर उसको ऐसे ऐसे करेंगे। और फिर इतनी जल्दी अंदर जाके बाहर आएंगे, जैसे मान लो पानी नहीं, वो लाइव वायर या इलेक्ट्रिक करंट वहां से छोड़ रहा है। तो अब देखो, अचानक बारिश हो गई, देखो क्या क्लाइमेट, हमको लग रहा था कि गर्मी शुरू होने वाली है, हमने अपने सारे स्वेटर वेटर अंदर रख दिए थे, है ना, सारे स्वेटर वेटर अंदर रख दिए, और अभी अचानक बारिश हो गई। मुझे आज SMS आया, अकस्मात बारिश का कारण होली के लिए रजनीकांत पिचकारी छोड़ रहा है। तो अचानक सर्दी शुरू हो गई, अब संडे एकादशी मंगल आरती को भी आना है, नहाना पड़ेगा उसके। तो फिर वो जो सुबह के समय नहाना, ऐसे तो आजकल हम लोग तो खैर अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर के लोग तो नहाना नहाना, कौन सी चिड़िया का नाम है, सर्दियों में नहाना। एक हमारा बैचमेट था, वो ट्रेनिंग के बाद की बात है, तो वो इसके लिए प्रसिद्ध था, नहीं नहाने के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारी एक पार्टी में उसने एक शेर पेश किया, क्या पेश किया, शेर पेश किया। तो कहता है, ये शेर है हमारे सारे वायु सैनिकों के लिए, ध्यान से सुनिए, बुलंद हौसलों को आजमाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुलंद हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में आदमी को मुस्कुराना चाहिए। कैसा लगा, है ना? खत्म नहीं हुआ अभी। बुलंद हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में आदमी को मुस्कुराना चाहिए। जब 7 दिन तक खुजली न जाए, जब 7 दिन तक खुजली न जाए तो 8वें दिन आदमी को नहाना चाहिए। तो ये चुनौती, मंगल आरती आने से पहले नहाना है, तो ये एक चुनौती है। सो दिस इज द सेकंड चैलेंज। व्हेन यू चूज टू टेक बाथ अर्ली, द कोल्ड क्लाइमेट विल चैलेंज यू। फिर व्हेन यू वांट टू पुट ऑन धोती कुर्ता साड़ी तिलक सब कुछ, मंदिर में आना है तो, so your convenient clothes and easy going attitude will challenge you। लगता है ये धोती पहन कर जाने क्या जरूरत है, ऊपर कुर्ता पहन लेते, नीचे पैंट पहन लेते। अब पैजामा ठीक है, आसान है वो। बाप रे, ये धोती मतलब वो पूरा उसको वो गांठ मारो, फिर आगे से वो प्लेट्स निकालो, पीछे से निकालो, ओ बाप रे, बहुत टाइम जाता है वो धोती में। या फिर माताजी साड़ी पहनना, बहुत टाइम जाता है। तो सब इजी, तो हमारा जो ये इजी गोइंग एटीट्यूड है, तिलक लगाना जल्दी जल्दी, कुछ तो नक्शा बना दो, लगना चाहिए कि कुछ। कई बार लोगों को लगता है ये इस्कॉन का तिलक इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर उसको ज्वाइन करो, फिर बाद में उसको सबको ज्वाइन करो एक तुलसी पत्ते से। वो कई बार तुलसी पत्ता नहीं, केले का पत्ता हो जाता है। मैंने देखा है कईयों। वो समझ में नहीं आता कौन सा पत्ता है। ये धोती कुर्ता साड़ी तिलक बहुत डिफिकल्ट है, सब इजी इजी इजी। सो दिस इज द नेक्स्ट चैलेंज। देन व्हेन यू चूज टू अटेंड द मंगल आरती, तो हमारे अंदर जो आलस्य है वो अलग अलग प्रकार से तर्क वितर्क कर कर कहते हैं, देखो युग धर्म मंगल आरती नहीं है। युग धर्म क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए अपना 16 माला पहले करो शांति से घर पे बैठकर। तो घर पे बैठकर 16 माला, मन और बुद्धि वो सब उनका समन्वय कन्विंस कर देता है कि तुम नहा लिए होंगे, तुम धोती भी पहन लिए होंगे, तिलक भी लगा लिया होगा, अब युग धर्म बैठकर अच्छे से करो। वो तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 99% एडवांसमेंट किसमें होता है? मंगल आरती में नहीं, जप में। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। मुझे बताया था, पता नहीं है कहां तक सच है, लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि एक डिवोटी की शादी हुई और उनकी शादी किसी इस्कॉन के भक्त से नहीं हुई, इस्कॉन के बाहर के किसी व्यक्ति से हुई। तो अब ये डिवोटी की जो अब ये नई पत्नी, जो कि नॉन इस्कॉन पर्सन, तो ये इनको थोड़ा थोड़ा उनको इस्कॉन के बारे में पता लगा कि इनकी मंगल आरती होती है, 4 नियम होते हैं। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को पूछा कि ये जो मैंने सुना ये मंगल आरती और 4 नियम, तो ये अपनी पत्नी को कहते हैं? नहीं, वो खाली ब्रह्मचारी के लिए। कहते हैं वो चार नियम, हाँ वो चार नियम और वो मंगल आरती वो ब्रह्मचारी के लिए वो इस्कॉन में। तो पत्नी को बहुत टाइम लगा कि शायद हो सकता है कि ये वो जो मंदिर में रहते हैं उनका नियम हो। फिर वो एक बार मंदिर में उन्होंने देखा कि मंगल आरती में गृहस्थ भी घूम रहे हैं, तो उन्होंने पूछा ये फिर ये गृहस्थ कैसे घूम रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे कुछ काम हो गया मंदिर में, शायद आए होंगे, लेकिन वो मंगल आरती ब्रह्मचारी के लिए होती है, वो कंपलसरी उनके लिए। और चार नियम भी ब्रह्मचारी के लिए। तो सोचो कई बार हमारा ये कलयुगी मन कितने कुपेड़ करता रहता है अलग अलग बैट बूट के, कि ये न के न प्रकारेण मैं कैसे एक आराम की भक्ति का जीवन जीऊं, कंफर्टेबल डिवोशनल सर्विस। रेडी फॉर द नेक्स्ट चॉइस एंड चैलेंज। फिर उसके बाद व्हेन यू चूज टू सिट एंड चैंट, तो तुरंत मन जो है वो चैलेंज करता है, जिसकी हमने चर्चा की। शरीर बैठा, क्या पता नहीं कनेक्शन है, बीड बैग में आपने हाथ डाला, मन यहां पर कबूतर की तरह उड़ना शुरू, यहां वहां यहां फुर, जैसे वो एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ बटन होता है ना वैसे, जैसे वो बीड बैग मतलब टेक ऑफ बटन है, वो अंदर हाथ डाला यहां पर मन टेक ऑफ लेता है, तू बैठ मैं चला। और कई बार मेरे को एक डिवोटी बोल रहे थे कि होता क्या है कि अगर वो बोल रहे थे कि मैं जब जप करने को मंदिर आता हूं तो मैं जब जप करता हूं तो ऑफिस के बारे में सोचता रहता हूं, मन मेरा ऑफिस के बारे में सोचता है, बाप रे अभी ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, आज ऑफिस में इतना काम है, बॉस भी टाइम पे ही आता है आजकल, मेरे को उससे पहले पहुंचना है, बहुत खड़ा हो गया है, ये वो ऑफिस के बारे में। यहां पे उंगलियां क्या कर रही हैं, माला को हिला रही, मन क्या है ऑफिस के बारे में सोच रहा। फिर जैसे तो यहां पर तीन चार माला हुई, ऑफिस गया, ऑफिस में अब जप के बारे में सोच रहा है, बारह माला बाकी, बारह माला बाकी। तो बोल रहे थे जप करते समय ऑफिस के बारे में मैं सोचता हूं, और ऑफिस में एक्चुअली हरिनाम के बारे में मैं नहीं सोच रहा था, वो काउंटिंग बीड्स, वो अभी तक नीचे नहीं गई है बाहर। तो ये हमारा मन हर समय जो चीज को सोचना चाहिए वो नहीं सोचवाता, उल्टा और कुछ सोचवाता रहता है। फिर व्हेन यू सिट डाउन टू हियर अ प्रवचन, प्रवचन भागवत के वचन मतलब प्रवचन चल रहे हैं, और मन जो है वो हमारे अंदर कहता है क्या बोरिंग लेक्चर चल रहा है। मन क्या बोलता है, कितनी बार वही चीज घुमा फिरा के, कभी हाँ ये स्लाइड में दिखाते कभी वो स्लाइड में दिखाते, वही चल रहा है। मन हमारा एंटरटेनमेंट चाहता है ना, और मन बोलता है मैंने बोला था वही लेक्चर होने वाला है, तू फिर आगे बैठ गया आके, बोला था पीछे बैठना। अब भुगत। सो व्हेन यू चूज टू सिट फॉर प्रवचन, योर माइंड हु वांट्स एंटरटेनमेंट चैलेंजेस यू। व्हेन यू चूज टू फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, योर ग्रीडी लस्टी सेंसेस विल चैलेंज यू। कितने भक्त कई बार वो कन्फेस करते हैं कि प्रभु जी पहले ये चार नियम पालन होते थे, कभी उसके बारे में इतना कॉन्शियस हम लोग सोचते नहीं थे, लेकिन अभी क्योंकि बोल दिया जाता है कि आपको चार नियम पालन करना है, पिक्चर नहीं देखना, पहले कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी पता नहीं बोलने के बाद ज्यादा इंटरेस्ट हो गया अभी पिक्चर देखने का, कांदा लहसुन नहीं खाना, पहले कोई इतना हावी नहीं था मेरे ऊपर, अभी लेकिन जैसे ही इतने सालों से खाया नहीं है, कांदा कांदा कांदा, चाय चाय चाय। टीवी पड़ा रहता था घर पे, कभी चालू करते थे नहीं करते थे। अभी जब बोला गया है टीवी नहीं देखना है, बार बार टीवी की ओर नजर जाती है। क्यों खरीदा था मैंने फिर? बेचारा वो भी कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वो क्रिकेट मैच चल रहा है, काउंसलर ने बोला है टीवी नहीं देखने का। पता करता हूं काउंसलर क्या कर रहा है। सो व्हेन यू चूज, जब भी हम स्वेच्छा से कुछ चयन करते हैं चुनौती सामने आएगी। व्हेन यू चूज टू फॉलो एकादशी, एकादशी के दिन ही यहां वहां के अनशन खाने के विचार आते। खिचड़ी कितनी प्यारी लगती है एकादशी के दिन, जब भगर को दिखते हैं, भगर शिंगदाना, भगर शिंगदाना, शिंगदाना भगर, शिंगदाना भगर, उसको ही घुमा फिरा के खिलाते रहते हैं किचन में। सो व्हेन यू चूज टू फॉलो समथिंग यू विल बी चैलेंज्ड लाइक दिस। व्हेन यू चूज टू डू डीटी वर्शिप, योर जॉब टाइमिंग्स विल चैलेंज यू। हाँ, डीटी वर्शिप करना है लेकिन जॉब टाइमिंग्स ऐसा है कि सुबह जल्दी जाना है, लेट आना होता है, थक जाते हैं। ब्राह्मण दीक्षा मिली है, डीटी वर्शिप करने की इच्छा भी है, बट दिस इज द चैलेंज। व्हेन यू चूज टू डोनेट फॉर सम स्पिरिचुअल कॉज, योर सेल्फिश माइजरलीनेस विल चैलेंज यू। 500 रुपए दान पेटी में डालना है, हम देखते हैं पहले से कितने पड़े हुए हैं ना, है ना, और भी जाते रहेंगे। अरे मेरे को शेविंग क्रीम लेना था, वो अभी खत्म हो रहा है, वो 500 रुपए में आ जाएगा ना अभी, वो भगवान को थोड़ी जरूरत है, हैं? भगवान तो क्या लक्ष्मीपति है, क्या तुरंत अंदर से कुछ ना कुछ चैलेंज आता है। व्हेन यू वांट टू एक्सटेंड योरसेल्फ, फाइनली व्हेन यू चूज टू एसोसिएट विथ डिवोटीज, योर फॉल्स ईगो विल चैलेंज यू। क्योंकि भक्तों के साथ रहना मतलब अहंकार को साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि यदि संसार में कोई हमारा अहंकार दूर करते हैं तो हमारे ही गुरु बंधु सबसे ज्यादा, जिनके साथ हमारी दीक्षा हुई है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वही लोग उनको भगवान नियुक्त करते हैं कि इसका अहंकार चूर करने का जिम्मा तुझे दे रहा हूं मैं। एचओडी वो हैं हमारे फॉल्सिको की दूर करने। तो भक्तों के साथ संग करने की इच्छा है लेकिन अहंकार वो हमें रोकता है कि नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, अकेले भक्ति करना चाहता हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा नम्र होना पड़ता है भक्तों के साथ रहने में। इसलिए एक इंटरेस्टिंग विजडम, ये जो आपके सामने आप देख रहे हो, भक्ति तीर्थ महाराज ने अपने एक आर्टिकल में ये बहुत सुंदर विजडम फ्रॉम एन ऑरेंज उन्होंने लिखा है। तो एक डायलॉग है, तो डायलॉग में एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है, इफ आई स्क्वीज एन ऑरेंज व्हाट विल आई गेट। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है ऑरेंज जूस, ऑब्वियसली यू विल गेट ऑरेंज जूस। तो ये व्यक्ति उसको पूछता है, व्हाट इफ आई स्क्वीज एन ऑरेंज एंड आई गेट पोमोग्रेनेट जूस। आर यू मैड? How can you get pomegranate juice? How about grape juice? No way! If you squeeze an orange, you'll get orange juice. तो भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं, similarly, What is inside you will come out when Krishna squeezes you. When Krishna squeezes us, हमारे अंदर जो है वही बाहर आएगा. जैसे कि संतरा, उसके अंदर संतरे का जूस है. चाहे आप और कुछ भी अपेक्षा रखो, उसको जब निचोड़ा जाएगा तो उसके अंदर से संतरे का जूस ही बाहर आएगा और कुछ बाहर नहीं आने वाला. This means every day, every moment, what we put in our mind, in our internal system, हमारे अंदर की engineering, our inner engineering, क्या चल रहा है उसके अंदर. जब विकट परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, साधना भक्ति में, व्यक्तिगत जीवन में भी, तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान किसी को भेजते हैं या स्वयं भगवान हमको स्क्वीज करते हैं और फिर हमारे अंदर जो है, जो हमने इतने सालों से रखा है, इफ वी हैव पुट कृष्णा, कृष्णा विल कम आउट. इफ वी हैव कल्टिवेटेड पुटिंग समथिंग एल्स अदर देन कृष्णा, व्हेन चैलेंजेस कम, ओनली दैट थिंग विल कम आउट. लास्ट टाइम मैं जब आ रहा था लंदन से, तो एयरपोर्ट में आपने देखा होगा बैगेज क्लेम, बैगेज क्लेम का जो एरिया होता है, जहां पर वो कन्वेयर बेल्ट पर सबके बैग्स रोटेट होते रहते हैं और सब लोग खड़े होते हैं अपने अपने बैग की प्रतीक्षा करते. तो मैंने देखा एक व्यक्ति, उसका बैग आया, तो उसने जैसे ही अपना बैग उठाया, वो क्या कहता है, बाप रे इतना भारी. तो मैं देख रहा था, मेरे को एक छोटा सा रियलाइजेशन उसमें हुआ कि बैग इसी का है, इसी ने पैक किया होगा और पूछता इतना भारी. सिमिलरली हम लोग जब प्रश्न पूछते ना, मेरा मन यहां वहां क्यों भागता है प्रभु जी, अरे उसके अंदर माल किसने भरा है, हमने ही भरा है, हमने ही अथक प्रयास कर इस मन को इतना ज्यादा रेस्टलेस हमने ही बनाया है. तो जैसे वो आदमी खुद का ही बैग उठाते हुए कह रहा है कि बैग इतना भारी, बाप रे इतना भारी बैग कैसे हुआ, कैसे हुआ भाई, तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे ही आइटम्स है उसके अंदर. इसलिए जब हम ये प्रश्न पूछते ना, ये मेरा मन क्यों इतना इधर उधर भागता, भैया हमारा ही मन है, किसी और का भाड़े पे लेके नहीं घूम रहे हम. अच्छा, अनदर थिंग इज, कोई अगर कहे उसका बैग आ गया और वो कहे कि नहीं मेरा बैग नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दैट बैग इज योर्स, क्लेम इट, इसलिए बैगेज क्लेम लिखते हैं. और एक दूसरा, किसी और का बैग उठा लो. So these are the two wrong things in this world. जो लोग गलत कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करते और दूसरों का हड़प के बैठे हुए हैं. Not confessing one's own heavy baggage instead picking up someone else's bag. तो भक्ति तीर्थ महाराज इस एग्जाम्पल से कह रहे हैं, If you have put Krishna in your mind, when Krishna will squeeze you, only Krishna will come out. And if in case you have put Maya in your mind, when Krishna will squeeze you, Maya will come out. Bhakti Rakshak Shridhar Maharaj, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में. चैतन्य महाप्रभु के अंतिम दिनों में चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 पद लिखे शिक्षाष्टकम गंभीरा में, तो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा. वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ खाता है, तो जैसे मान लो कि सुबह नाश्ता करके यहां पर कोई लोग बैठे होंगे, हमको नहीं पता क्या है, क्या खाया होगा उन्होंने, नहीं पता है ना। परंतु यदि किसी को उल्टी आ जाए, तो जब वो उल्टी कर देता है तो उस उल्टी को देख के समझ में आ जाएगा कि क्या क्या खाया था इसने, है ना। तो ये उदाहरण वो देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 पद लिखे, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर किया क्या, केवल कृष्ण 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 भक्ति, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रचार। तो इसलिए शिक्षाष्टकम है क्या, चैतन्य महाप्रभु ने जो इतना अंदर डाला अब उसको 8 पद में बाहर निकाला। और वो उदाहरण देते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम है भगवान के प्रति, गौर पूर्णिमा आ रही है इसलिए ये उदाहरण मैं देना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो एक ज्वालामुखी के समान है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्यों कहलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर से लावा निकलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात भगवान कृष्ण हैं, उनके अंदर से ज्वालामुखी फटा गंभीरा में, और उस ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकला वो है शिक्षाष्टकम 8 पद। तो ये उदाहरण भी उसी प्रकार का है, व्हाट इज इनसाइड विल कम आउट व्हेन कृष्णा विल स्क्वीज अस। इसलिए ये उदाहरण दिया जाता है कि हमें एक गुलाब की तरह बनना चाहिए। किस तरह बनना चाहिए, गुलाब की तरह बनना चाहिए। गुलाब जो है, गुलाब को जब कोई अपने पैर के नीचे रौंदता है तो बदले में गुलाब क्या देता है, सुगंध, क्योंकि गुलाब के अंदर गुलाब की सुगंध के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए एक भक्त को गुलाब की तरह होना चाहिए कि यदि उसको भगवान या इस संसार के लोग रौंद भी दें तो भी उसके अंदर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक गुरु और शिष्य थे, तो शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी आपने कहा था कि ये आध्यात्मिक साधना का पालन करने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आएगा, मैं आध्यात्मिक बनूंगा, परंतु मैं तो अभी तक उस आध्यात्म का अनुभव नहीं कर पा रहा, क्या कारण है। कॉमन क्वेश्चन है काफी। शिष्य ने यह प्रश्न अपने गुरु से पूछा, आपने जो मुझे साधना दी वो साधना मैंने पालन की, परंतु मेरे अंदर कोई परिवर्तन, मैं स्पिरिचुअल अपने आप को अनुभव ही नहीं कर पा रहा। गुरु जी ने कहा, एक काम करो, एक लोटे में दारू लेकर आओ। देखो गुरु जी क्या बोल रहे हैं, लोटे में शराब लेकर आओ। शिष्य सोचे, गुरुजी होते हैं अजीब प्रकार से उत्तर देते हैं कभी कभी प्रश्नों का, लेकर आ गया लोटे के अंदर दारू भर कर लेकर आया। गुरुजी ने कहा, अब एक घूंट पियो दारू का। गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप, मैंने कहा पियो। तो उसने घूंट पिया, गुरुजी ने कहा उसको गले के नीचे मत लेना, कुल्ला करके फेंको। उसने कुल्ला किया, किसका, दारू का, फेंका, एक और घूंट लो, ऐसे करके एक और पूरा लोटा उसे खाली करवाया। बोला कि एक घूंट गले के नीचे नहीं जानी चाहिए, कुल्ला कर करके फेंक कर दिया। फिर गुरुजी ने पूछा, नशा चढ़ा क्या। नशा चढ़ा, शिष्य ने कहा नशा कैसे चढ़ेगा, मैंने तो दारू अंदर ली नहीं, खाली कुल्ला कर करके फेंक रहा था। गुरुजी ने कहा तेरी साधना भी वो कुल्ले के समान है, तू खाली कुल्ला कर करके थूक रहा है, अंदर ली नहीं तूने। हमारा भी हाल ऐसा ही है, कितने साल बीत गए साधना करते हुए, कर क्या रहे हैं हम लोग। हम जब देखते हैं इतने सालों बाद भी अब भी मेरे अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो कारण क्या है? हम भी उस शिष्य की तरह केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कुल्ला कर करके फेंक रहे हैं। नहीं तो यदि मात्रात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतने सालों से पता नहीं कितना महामंत्र हमने बोल लिया होगा, गा लिया होगा, कर लिया होगा, कितनी माला घुमा ली होगी, कितना महाप्रसाद अंदर ले लिया होगा, कितने तीर्थ यात्रण कर लिए होंगे, कितनी बार दंडवत कर लिया होगा, कितनी बार कितने प्रवचन सुन लिए, दे लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन परिवर्तन नहीं दिख रहा। मतलब ये सब का केवल मिलाकर किया क्या? कुल्ला। समझते ना, कुल्ला, कुल्ला किया। क्या कहते हैं? गुड़नी, गुड़नी, फक्त गुड़नी केली, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमारे कॉलेज प्रीचिंग में हम देखते हैं ना, स्टूडेंट जब थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, मंदिर आना शुरू करते हैं, ब्रह्मचारियों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो अब सचेत हो जाते हैं। तो जब उनको पता लगता है कि मेरा बेटा हरे कृष्णा मंदिर में जा रहा है और इन साधुओं के साथ उठता बैठता है, उनके प्रवचन सुनता है, तो वो लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं? बेटा तू जा रहा है, मंदिर जा रहा है, अच्छी बात है, हरे कृष्णा मंदिर जा रहा है, ऊपर ऊपर से कुल्ला करना, खाली कुल्ला, अंदर मत लेना उसको, उसको बता के भेजते हैं, कुल्ला करते रहना। वैसे ही हमारा मन भी हमको हर बार यही कहता रहता है, ठीक है तू दीक्षा हो गई, महामंत्र तेरे को मिल गया है, ठीक है मैं उसको सह लूंगा, तू तू अभी पूरा जीवन तेरा भगवान को देने वाला है, तू ये सब ऐलान कर रहा है, केवल एक चीज मेरी मानना, कुल्ला करते रहना बस, अंदर अंदर ले लेना, गले के नीचे मत उतारना, कुल्ला करते रहना। हमारा मन हर समय हमको केवल कुल्ला करने के लिए कहता रहता है। इसलिए बहुत पावरफुल लेसन गुरु जी ने शिष्य को सिखाया कि नशा कब चढ़ेगा। उस शराब का नशा कब चढ़ेगा? जब उसे अंदर लोगे। इसलिए भक्ति का नशा हमें कब चढ़ेगा? जब उस हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम, जब इस हरि नाम को प्याले में लेकर हम अंदर लेंगे, तब जाकर कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ेगा। इसलिए साधना भक्ति किस प्रकार से है? वॉशिंग मशीन है ना। अब देखो, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े जब आप डालते हो, अब जब वॉशिंग मशीन को ऑन करते हो तो क्या होता है? पहले धीरे 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 है ना, वॉशिंग मशीन कपड़े को धीरे धीरे घुमाती है, फिर उसका इंटेंसिटी बढ़ता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और आप उस जैसे यहां पे दिख रहा है, आपको दिखता भी कपड़े कैसे घूम रहे हैं, और कभी कभी फिर इतनी स्पीड में वो कपड़े घूमते हैं लास्ट में कि समझ में ही नहीं आता है कि ये कितने कपड़े डाले थे, कुछ दिख नहीं रहा, इतने फास्ट। वैसी साधना भक्ति है, साधना भक्ति क्या है, हम लोग हमारा मन ये कपड़ों के तरह एकदम मैला कुचैला कपड़ा डाल देते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की साधना के अंदर, फिर हम लोग हमारी चॉइस के अनुसार कह देते हैं गुरु साधु शास्त्र कह देते हैं बटन दबा दो चालू कर दो इस मशीन को, फिर शुरू होती है हमारी धीरे धीरे धीरे. सो साधना भक्ति मीन्स यू विल बी ट्विस्टेड, यू विल बी नॉक्ड जस्ट लाइक क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन, यू विल बी टर्न्ड अपसाइड डाउन. Ultimately for what? For the clothes to come out clean. है ना, इसलिए क्या कहते हैं धुलाई. Washing को क्या कहते हैं धुलाई. तो साधना भक्ति में हमारा ये सारे जो नियम हैं, ये सारी चुनौतियों के साथ साधना करना मतलब हमारी धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है. इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, न केवल मार्जन हो रहा है बल्कि पूरे विश्व में जितने ये दावाग्नि, न केवल अग्नि दावाग्नि बल्कि महादावाग्नि, इस सब को शांत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उत्तरित होते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र युग धर्म को देते हुए. तो हमारा मुद्दा क्या चल रहा है, चॉइस वर्सेस चैलेंजेस. यू हैव चोजन टू पुट योरसेल्फ इन द वॉशिंग मशीन ऑफ द युग धर्म, बी रेडी टू बी ट्विस्टेड टर्न्ड अपसाइड डाउन नॉक्ड इफ यू वांट टू कम आउट क्लीन. दैट इज द चैलेंज लेसन फ्रॉम डोंकी इन अ वेल. एक गांव में एक धोबी का एक गधा था, घास चरते चरते ये गधे ने किया क्या, ये एक कुएं के अंदर गिर गया और वो कुआं कोई पानी उसके अंदर नहीं था. अब गहरा कुआं, तो अब बाहर कैसे निकले, कैसे कोई गधे को बाहर निकाले. तो धोबी ने सोचा कि अब तो ये गधा गया, तो चलो अब ये गधा मेरा नहीं रहा, अब ये गधा वैसे भी मरने वाला है, तो चलो इसको यहीं दफना देते हैं, इस कुएं के अंदर दफना देते हैं ताकि और कोई गिरे ना इसके अंदर. तो धोबी ने किया क्या, मिट्टी ली गधे के ऊपर डाली, दफना रहा है. कैसे दफनाते हैं किसी मुर्दे को, मिट्टी डालते हैं. तो मिट्टी डालने लगा गधे के ऊपर. अब गधे ने क्या किया, जैसे ही गधे के पीठ पर मिट्टी गिरती गधा उसको झड़काता, जैसे कोई भी जानवर झड़का देता ना उसको, झड़का देता तो मिट्टी उसके पैरों के नीचे आ गई, तो लेवल बढ़ गया. जितनी मिट्टी उसके पीठ के ऊपर आती गई गधा उसे झड़काता गया और उस पर चढ़ता गया, मिट्टी पर चढ़ता गया, झड़काता गया चढ़ता गया, झड़काता गया चढ़ता गया. तो लेसन क्या है, लेसन ये है, व्हेन मिजरीज एंड चैलेंजेस आर थ्रोन अपॉन अस, हमको करना क्या है, ये सिंपल स्लोगन या मंत्र है, शेक इट ऑफ स्टेप अप, शेक इट ऑफ स्टेप अप, शेक इट ऑफ स्टेप अप. हमको वही चुनौती का सामना कर भगवान को दिखाना है कि यस कृष्णा आई चूज यू ओवर दिस वर्ल्ड. और इसलिए भगवान चुनौतियां भेजते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे देवामृत महाराज ने अपनी पुस्तक में लिखा, भक्ति भाव पुस्तक में, दैट द चॉइस मसल्स बिकम स्ट्रांग व्हेन चैलेंजेस कम इन फ्रंट ऑफ यू सेंट बाय कृष्णा टू मेक श्योर टू चेक अवर कैरेक्टर व्हाट आर वी गोइंग टू चूज. सो देयरफॉर यदि हमें, इफ यू वांट टू शो अवर एंथुजियाज्म, हमारा लौल्यम अगर हमें दिखाना है भगवान की ओर, तो उस लौल्यम को दिखाने के लिए चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है. और इन चुनौतियों का सामना जितनी बखूबी हम करेंगे, कैसे करेंगे, गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में। वो हमें बताते भी हैं कि चुनौतियां क्या होंगी और ये भी बताते हैं कि वो कब आएंगी, कैसे आएंगी और उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है। जैसे हमने पूरा लिस्ट निकाला था हमारी साधना भक्ति के अलग अलग प्रकार के जो अंग हैं उसमें कैसे कैसी चुनौतियां आएंगी। इसलिए आज के हमारे प्रवचन का टेक होम मैसेज क्या है, देयर विल बी ऑलवेज अ चैलेंज व्हेन यू चूज कृष्णा और एनीथिंग इन कनेक्शन विद कृष्णा। मेक श्योर यू डोंट जस्ट गार्गल कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम यहां पर केवल कृष्ण भक्ति का कुल्ला करने नहीं आए हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था जो खोली जिसके अंदर कृष्ण भक्ति इस प्रकार से दी है कि उन्होंने अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें आह्वान किया है। अर्जुन ने केवल गीता सुनकर कुल्ला नहीं किया, अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित किया। हां तो भारत में कृष्ण भक्ति बहुत लोग बोल रहे होंगे इसके बारे में, परंतु हमारे श्रील प्रभुपाद जो कि चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों पर चलते हुए हमें उन्होंने क्या दिया है, हमें उन्होंने एक ऐसी कृष्ण भक्ति दी है जो हम अंदर तक उतार पाए और फिर कृष्ण प्रेम का जो वास्तविक नशा है, वो जो अनुभव है कृष्ण प्रेम का, वो हमें प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका? तो आपको सूचित कर दें, इस बार की हमारी गौर पूर्णिमा पर श्रीमान ब्रज बिहारी प्रभु आ रहे हैं। दो दिन की गौर कथा होगी, बुधवार गीतामृत कार्यक्रम की जगह गौर कथा उनके द्वारा दी जाएगी 4 तारीख, और फिर 5 तारीख जो कि गौर पूर्णिमा का दिन है, सुबह और शाम का प्रवचन हिज ग्रेस ब्रज बिहारी प्रभु द्वारा दिया जाएगा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। ताय गौर प्रेमानंदी।
इस शिक्षाष्टकम प्रभु की। हरे कृष्णा।